सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के अतिरिक्त व्यापार शुल्क की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक नरेंद्र तनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
अमेरिका ने भारतीय आयातों पर 25% अतिरिक्त व्यापार शुल्क की कल घोषणा की। पहले ही वो 25% टैरिफ की घोषणा 7 दिन पहले कर चुके हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट GTRI ने अमेरिका के इस फैसले की आलोचना की है और भारतीय सरकार ने भी इसे अनफेयर बताया है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट नरेंद्र तनेजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
धन्यवाद
मिस्टर तनेजा। क्या कहेंगे आप, ये जो सिचुएशन उभर रही है, अब अमेरिका ने रशियन ऑयल के इम्पोर्ट्स को लेकर जो भारत ने जारी रखे हैं और उसको लेकर उन्होंने जो पेनल्टी की बात कही थी, अब उसको 25% टैरिफ का रूप दिया है, जो एडिशनल टैरिफ उन्होंने लगाया है। और भारत की तरफ से भी बहुत प्रतिक्रिया आई है ये जताने के लिए, ये बताने के लिए कि ये कितना अनफेयर है। कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को?
देखिए, भारत जो है एक स्वतंत्र देश है, सॉवरन कंट्री है हमारे, और हमारे यहाँ फ्री इकोनॉमी है, और हमारे यहाँ कोई कंपनी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर की हो, किस देश से क्या व्यापार करती है, क्या वहां से आयात करती है, किन कॉमर्शियल कंडीशन या जो उन शर्तों पर करती है, ये उन कंपनियों की जिम्मेदारी होती है। और सरकार की ब्रॉड एक नीति होती है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत वो करती है। तो हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो निजी कंपनियां हों, जो रूस से तेल आयात करती हैं, वो भारतीय जो कानून है उसके अंतर्गत करती हैं। और कोई भी कंपनी हमारे देश की जो भारत में है, सरकारी या निजी, वो कोई ऐसा काम नहीं करती जो सरकार की जो नीति है या सरकार के जो कानून है उसके अंतर्गत नहीं होता। रूस से हमारी कंपनियां तेल लाती हैं, उसकी मुख्य वजह यह है कि रूस की जो निर्यातक हैं, जो वहां की कंपनियां हैं, वो अच्छे दामों पे तेल देती हैं, अच्छी क्वालिटी का तेल देती हैं, और काफी हद तक वो भारत के जो हमारे बंदरगाह है वहां तक तेल पहुंचा के देती हैं। तो लिहाजा हमारी कंपनियां वहां से तेल खरीदती हैं। भारत ने रूस के ऊपर या रूस से आयात पर किसी तरह के प्रतिबंध हमने नहीं लगाए हैं। रूस हमारा मित्र देश है और किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका और पश्चिम के कुछ देशों को रूस से यूक्रेन को लेकर के शिकायत है, लिहाजा उन्होंने कुछ प्रतिबंध या सैंक्शंस लगा रखी हैं। वो यूनिलैटरल है, वो उनकी तरफ से है, वो कोई यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने लगाई है, वो उसका पालन करें, उनकी कंपनियां उसका पालन करें ना करें, वो उनके बीच का मसला है। अब ट्रम्प साहब ने जो घोषणा करी, पहले 25% फिर उसको दोबारा 25% बढ़ा दिया, ये कहते हुए कि भारत की कंपनियां या भारत जो है रूस से क्यों तेल का आयात करता है, उसको उन्होंने यूक्रेन में जो युद्ध है उससे उसको लिंक किया, जो बिल्कुल जिसके में ना तो कोई उसका तर्क बनता है ना कोई औचित्य बनता है, क्योंकि वो उनका आपस का मसला है। और खुद अमेरिका की कंपनियां वहां से तरह तरह की चीजों का आयात करती हैं, खुद उन्हीं के मित्र देश जो पश्चिम यूरोप के हैं और नेटो के सदस्य हैं, भारी मात्रा में वहां से गैस का आयात करते हैं, तेल का आयात करते हैं। आप टर्की को देखिए, जो नेटो का मेंबर है, वो भी भारी मात्रा में रूस से तेल का आयात करता है, पश्चिम के तमाम देश वहां से गैस का आयात करते हैं। तो और उनका प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये सब छोड़ करके नजरअंदाज करते हुए भारत पर निशाना साधना और ये कहना कि भारत करता है, लिहाजा जो है हम भारत के प्रति जो है वो सेकेंडरी सैंक्शंस लगा रहे हैं, 50% उसको उन्होंने कर दिया है, तो इसका ये तो गैर कानूनी है अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से, और इसका कोई औचित्य भी नहीं बनता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका भी बहुत बड़ा लोकतंत्र है, और हम दोनों देशों की आपस में काफी अच्छी जो है वो साझेदारी है कई मसलों को लेकर के, इंडो पैसिफिक को लेकर, क्वाड में लेकर के, और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उस सबके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रम्प का भारत को जो है एक सिंगल आउट करना और इस तरह की जो है वो सैंक्शंस लगा देना, उनका कोई औचित्य नहीं है। अब इसकी दो वजह हो सकती है, एक वजह यह हो सकती है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर वो परेशान आ गए, तो वो आपस में बात करें, भारत का उससे क्या लेना देना। दूसरी बात, जो ट्रेड डिस्कशंस चल रहे हैं ट्रेड डील को लेकर के, अगर उसको लेके उनको कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उनके डिप्लोमेट है, हमारे डिप्लोमेट है, आपस में बातचीत करते हैं, और उसको लेकर के उसका समझौता निकालना चाहिए, कोई हल
जी
ढूंढना चाहिए। अगर उनकी कुछ ऐसी मांग है जिस मांग को भारत नहीं पूरी कर सकता, जो सुनाई में आ रहा है, वो ये चाहते हैं कि जो भारत है वो अपना रूरल इकोनॉमी, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बाजार है, वो चाहते हैं, अमरीका चाहता है, ट्रंप साहब चाहते हैं कि उसको अमरीकी कंपनियों के लिए भारत खोल दे, तो हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो पूरी उनके लिए खोल दी जाए, तरह तरह की चीजों के लिए, जिसमें डेयरी भी शामिल है, उसमें फिशरीज भी शामिल है, वगैरह वगैरह। वो तो भारत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारी हमारा जो रूरल इकोनॉमी है बिल्कुल अलग है, और भारत में जो रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो खाली अर्थव्यवस्था नहीं है, या वो खाली किसानी नहीं है, वो संस्कृति है, वो सोच है, वो संगीत है, वो गीत है, वो रहना सहना है, उनकी रहने की शैली है, तो बहुत फर्क है। जबकि अमरीका में जो लोग इन उत्पादों का, जो कृषि के उत्पादों का काम करते हैं, वो उद्योग है, वहां पे बड़े बड़े उद्योग हैं, हजार हजार एकड़ के उनके फार्म होते हैं, मशीनें होती है वहां, तमाम किसानों के पास हवाई जहाज होते हैं, तो उसकी दो तुलना नहीं की जा सकती।
जी बिल्कुल,
तो लिहाजा ये भी भारत ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, वजह क्या है ये उनको या तो स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर जो उन्होंने किया है, भारत एक मित्र देश है, उसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं होता, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से वो गैर कानूनी है।
आपने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की भारत की, उसके बारे में, उसके संरक्षण के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज वो संबोधित कर रहे थे एमएस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में।
हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा, और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है।
प्रधानमंत्री ने भी ये दोहराया है कि जैसा आप कह रहे थे कि जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं या जो किसान हैं या हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको बचाना, उसका संरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो एक तरह से जैसे रेड लाइन हम कहते हैं, वो नेगोशिएटर्स ने खींची हुई है जो इंडिया यूएस ट्रेड डील की बातचीत चल रही है उसमें। और 27 अगस्त का दिवस दिया है अमेरिका ने, जब ये अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू होगा, उससे पहले 25 अगस्त को वहां से एक प्रतिनिधि मंडल आ रहा है यहाँ पे बात करने के लिए, तो आपको लगता है कि ये जो 3 वीक्स की विंडो है, 3 सप्ताह की विंडो, इसकी भी बहुत अहमियत है, और शायद हम कुछ समीकरण बदलते हुए देख सकते हैं?
देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारा अमेरिका के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, और हमारे जो उनसे संबंध है वो काफी हद तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, वो किसी व्यक्ति या किसी एक पद या राष्ट्रपति उस पर निर्भर नहीं है। अमेरिका भारत दो बड़े देश हैं, वहां पे संस्थाएं हैं, अपने उनके कानून हैं, बिजनेस और ट्रेड के प्रोटोकॉल्स हैं, और बहुत पुरानी एक परंपरा है, और भारत में उसी के अंतर्गत भारत के हमेशा अप्रोच रही, वो उन्होंने तरह तरह के वक्तव्य दिए, लेकिन भारत ने काफी हद तक उन वक्तव्यों को नजरअंदाज भी किया है। खासतौर से उसमें एक ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो डेड इकोनॉमी है, इस तरह के वक्तव्य मित्र देशों के लिए नहीं दिए जाते, लेकिन हमारे देश की अपनी एक कूटनीति की शैली है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शैली है, उसमें हम बहुत ही सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कोई भी देश हो। तो भारत ने कई जगह चुप्पी भी साधी, क्योंकि चुप्पी साधना भी हमारी जो कूटनीति की संस्कृति है उसमें एक शैली है, वो भी जवाब देने का एक तरीका होता है। तो इसलिए वहां से ट्रेड डेलीगेशन आ रहा है, जैसा सुनाई में आ रहा है, तो अगर वो वहां से आते हैं, जिन मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाएगी, जिन पर समझौता हो पाएगा उस पर समझौता किया जाएगा, जहां पे हमको लगता है कि एक लक्ष्मण रेखा है, उससे बाहर आगे जाना मुश्किल होगा, तो वो भी उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। और इतना बड़ा देश है, उनको भी खादी पता होना चाहिए कि भारत की जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो काफी अलग है अमरीकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, तो इस सबको बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल स्पष्ट करा, जैसा आपने उसकी चर्चा करी, कि जहां तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात है, किसानों के हित की बात है, या जो हमारे यहाँ पशुपालन करते हैं या मछली पालन करते हैं, उन सबके हितों की रक्षा, वो सरकार के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। और कोई भी व्यक्ति जो भारत के बारे में थोड़ा भी जानता है, उसको ये पता होना चाहिए कि भाई भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल अलग है, वो पश्चिम के देशों की तरह नहीं है, अमरीका की अर्थव्यवस्था की तरह नहीं है, और उनकी हर तरह से सुरक्षा करना, और ये देखभाल करना, और ये देखना कि वहां किसी भी तरह का उनका जो जीवन है उसमें कोई नई परेशानी ना पैदा हो जाए, ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, और इसके बारे में प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट करा है। और लगता है कि अगर ये बात जो है वहां पहुंचती है वाशिंगटन डीसी वहां के राष्ट्रपति के पास, तो जो ट्रेड डेलीगेशन आएगा वो इस ब्रीफ को लेकर के आएगा। भारत की अभी भी कोशिश है, अमेरिका एक मित्र देश है और बहुत अच्छा मित्र देश है, वहां पर लाखों भारतीय रहते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीय हमारे जो वहां रहते हैं बहुत बड़ा योगदान है, और कुल मिलाकर के हम चाहते हैं कि भारत और अमरीका आगे बढ़े एशिया को लेकर के, एशिया की पूरी संपन्नता को लेकर के। तो भारत का रवैया बहुत ही मेच्योर, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही पॉजिटिव, और इसीलिए भारत में उम्मीद की जाती है। ठीक है, अभी जो कुछ हुआ है वो हुआ है, जिस तरह के वक्तव्य आए हैं, भाषा की शैली रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ये जरूरी है कि अब बातचीत को आगे लेके जाया जाए। लेकिन इतना आवश्यक है कि भारत एक पुरानी सभ्यता है, 7,000 साल पुरानी सभ्यता है, हमारे यहाँ आत्मसम्मान, हमारे यहाँ अस्मिता और हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय हित होते हैं इनको लेकर के जो भाषा का प्रयोग कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर करता है थोड़ा ध्यान रखे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा।
जी बिल्कुल, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी टैरिफ लागू होते हैं वो किस तरह से हमारे एक्सपोर्टर्स को इम्पैक्ट करेंगे? क्या लगता है आपको, जो सडन कॉस्ट एस्केलेशन होगा, एकदम से जो लागत बढ़ेगी टैरिफ्स के कारण, उसे कौन एब्जॉर्ब करेगा? भारतीय निर्यातक, यूएस के आयातक या यूएस के कंज्यूमर्स? इसके लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स होंगे?
इसके देखिए दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि उन्होंने जो उनका जो असली मुद्दा है वो तेल का है, उनका कहना है रूस से तेल ना मंगाएं, और जबकि जो रूस जो है पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो ऑयल सप्लाई सिस्टम है उसके अंदर भारी मात्रा में तेल का निर्यात करता है जो पूरी दुनिया में जाता है, लगभग 45 लाख बैरल प्रतिदिन तो कच्चा तेल रूसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता है, और साथ में 25 लाख बैरल प्रतिदिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह जो है वो बाजार में आते हैं। तो दोनों मिलाकर के बहुत बड़ी हिस्सेदारी है जो ट्रंप साहब चाहते हैं वहां के राष्ट्रपति अमेरिका के, कि रूसी तेल इस बाजार में आना बंद हो जाए। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक भी है और दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता भी है, तो ऐसा अगर होता है रूसी तेल गायब होता है तो तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, और ऐसे हालत के अंदर जो सबसे ज्यादा चोट लगेगी और परेशानी होगी अमरीकी उपभोक्ता को होगी, अमरीकी अर्थव्यवस्था को होगी, अमरीकी अर्थव्यवस्था में जो महंगाई बढ़ेगी क्योंकि वो ही दुनिया के सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता है। भारत भी बहुत बड़ा उपभोक्ता है, हम तीसरे नंबर पे आते हैं, अमरीका के बाद चीन है, उसके बाद भारत है, तो हमको भी काफी उसमें चुनौतियां हमारे लिए नहीं खड़ी हो जाएंगी। तो एक तो पहला ये विषय है कि तेल की कीमत अगर ऊपर बढ़ती है तो अमरीका के लिए खुद के लिए परेशानी होगी, और जब क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जो धुरी है वो भी तेल है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी तेल है, भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी भी तेल है। दूसरा जो है, जो भारत के उत्पाद यहां से जाएंगे हमारे यहां से, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, स्टील भी है, दवाइयां भी हैं, जो डायमंड ज्वेलरी भी है, बहुत सारी चीजें हैं, सर्विसेज भी हैं, अगर उसके ऊपर जो है वो टैरिफ जो है वो 50% लगा देते हैं तो आप अंदाज लगाइए कि वो उसका बोझ किस पे जाएगा। उसका बोझ तो अमरीकी उपभोक्ता पे ही जाएगा ना, क्योंकि एकाएक एक रात के अंदर या एक साल में या 6 महीने के अंदर वो नए स्टील के कारखाने तो वहां बन नहीं जाएंगे, या वहां पे जो है नए लोग पैदा नहीं हो जाएंगे जो डायमंड ज्वेलरी का काम करने लगे, या वहां दवाई के नए कारखाने तो नहीं खड़े हो जाएंगे, इतनी जल्दी तो होता नहीं है। वो चाहते हैं सारी चीजें अमरीका में बने और अमरीका अपने लिए भी बनाए और पूरी दुनिया के लिए बनाए। ठीक है, अच्छा अच्छा आपका इरादा हो सकता है, लेकिन ये सब करने के लिए इको सिस्टम बनाना पड़ता है, उसमें तो सालों लग जाते हैं, और उनका ये कहना है हम तो बस 15 दिन 20 दिन बाद आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे, तो वो मिलाकर के ठीक है हमारे लिए भी चुनौतियां बढ़ेंगी या जो भी निर्यातक है उनके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, ये तो है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती जो है वो अमरीकी उपभोक्ता के ऊपर, क्योंकि उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और जो चोट है वो अमरीकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी उपभोक्ता को कहीं ज्यादा लगेगी।
भारतीय वस्तुओं पर मौजूदा 25% शुल्क के अलावा 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की अमेरिका की घोषणा के बाद द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट GTRI ने भी अमेरिका के फैसले की आलोचना की। क्या लगता है आपको, अगर हम एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, वो जो रास्ता है वो हमारे लिए किस हद तक खुला है इस सिचुएशन से जूझने के लिए? और अगर हम सिर्फ तेल की ही बात करें तो वेस्ट एशियन ऑयल या जो हम पहले जहां से तेल लेते थे रूस से पहले, वापस वहां जाने के क्या विकल्प है ये देखते हुए कि रशिया ने अपने डिस्काउंट्स को काफी कम कर दिया है?
देखिए, इसके दो पहलू दोबारा बनते हैं। तेल का जहां तक विषय है, हमारी चिंता इस बात की नहीं है कि अगर रूस से तेल नहीं आता तो कहां से आएगा, दुनिया में बहुत तेल उपलब्ध है, तेल की कोई किसी भी तरह की कमी नहीं है। हमारी चिंता ये होती है कि अगर जो ट्रंप साहब चाहते हैं, अमरीकी राष्ट्रपति जो चाहते हैं, उससे तेल की कीमत बढ़ जाएगी। हमारी चिंता कीमत को लेकर के है, उसका दाम बढ़ जाएगा, चूंकि हम अपनी जरूरत का 88% तेल आयात करते हैं, तो हमारी चिंता तेल तो हम लेके आ जाएंगे, कोई कमी नहीं होगी। भारतीय उपभोक्ता को जो तेल खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, उसको कतई कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरीके की, लेकिन कीमत एक बहुत बड़ा विषय जो है हमारी कंपनियों के लिए खड़ा हो जाएगा। दूसरा, आपने ये कहा कि भाई भारत को जो है वो अगर अमेरिका का बाजार आंशिक रूप से भी बंद होता है हमारी कुछ चीजों के लिए टैरिफ के माध्यम से, वो इतना मुश्किल करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भारत जो है जब से हम आजाद हुए हम चुनौतियों का सामना करते आए हैं और हर चुनौतियों से जो है हम हमेशा विजयी होकर निकले हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया, धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के अतिरिक्त व्यापार शुल्क की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक नरेंद्र तनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।
सुर्खियों में